आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
इतिहास का सबसे महान रोमांटिक कवि, अंततः इतिहास का सबसे बड़ा सन्यासी कैसे बन गया? मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी का भी दिमाग पूरी तरह से घुमा दे।
हाँ, और इसकी शुरुआत बहुत ही नाटकीय तरीके से होती है, एक फल से।
बिल्कुल, और कोई साधारण फल नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी अमर फल जिसे खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, मौत उसे कभी छू भी नहीं सकेगी।
सोचिए, उस राजा के पास अमर होने का मौका था, लेकिन सदियों पुरानी इस कहानी में वो राजा उस फल को खुद खाने के बजाय
अपनी उस रानी को दे देता है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, मतलब अंधा प्यार जिसे कहते हैं।
एकदम सही। लेकिन इसके बाद जो घटना घटती है उसने न केवल उस राजा की पूरी दुनिया पलट कर रख दी, बल्कि इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक काव्यों में से एक को जन्म दिया।
तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है द किंग्स रेनाउंसिएशन, द फिलोसफी ऑफ भर्तृहरि।
पली हमारी जिंदगी में क्यों इतनी प्रासंगिक है?
बिल्कुल, तो चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे प्राचीन भारत के उज्जैन शहर की ओर लौटना होगा।
हाँ, देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ में राजा भर्तृहरि केवल एक शासक नहीं थे, उन्हें महान सम्राट विक्रमादित्य का बड़ा भाई माना जाता है।
उज्जैन उस वक्त ज्ञान, कला और शक्ति का एक चरम केंद्र था,
और एक इंसान जो कुछ भी हासिल करने की चाह रख सकता है ना, असीमित सत्ता, अपार धन, भव्य महल, वो सब भर्तृहरि के पास था।
और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी रानी जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था।
बिल्कुल, उनका जीवन हर मायने में पूर्ण था, मतलब कम से कम उनके अपने दिमाग में तो उनका यही यथार्थ था।
यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो इंसान के मनोविज्ञान की सबसे गहरी परतों को उधेड़ कर रख देता है। राजा ने अपना वो अनमोल अमर फल अपनी सबसे प्रिय रानी को सौंप दिया।
और रानी, जो राजा की नजर में दुनिया की सबसे वफादार और प्रेम करने वाली इंसान थी,
वो दरअसल किसी और से प्रेम करती थी।
हाँ, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। स्रोत के अनुसार संभवतः वो रानी राजा की ही किसी सेनापति या घुड़सवार से प्रेम करती थी, और रानी ने वो अमर फल उस सेनापति को दे दिया।
लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकती, मतलब ये तो एक पूरी चेन बन गई।
वो सेनापति खुद शहर की एक अत्यंत सुंदर वेश्या के प्यार में पागल था।
सही कहा, तो उसने क्या किया?
उसने वो चमत्कारिक फल उस वेश्या को भेंट कर दिया।
और यहाँ उस वेश्या की जो जीवन दृष्टि है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है।
हाँ, उसने उस फल को देखकर एक बहुत ही यथार्थवादी और कह सकते हैं कठोर मूल्यांकन किया। उसने सोचा कि उसका अपना जीवन तो पहले से ही समाज के हाशिए पर है, दुखों और अपमान से भरा हुआ है, तो ऐसे में अमर होकर वो क्या ही हासिल कर लेगी, मतलब हमेशा के लिए उसी दुख को जीना कोई वरदान तो हो नहीं सकता।
बिल्कुल, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर ये फल राजा को दे दिया जाए तो शायद राजा की उम्र लंबी हो और पूरे राज्य का कल्याण हो सके।
और ये वो पल है जहाँ यथार्थ और भ्रम की बहुत भयंकर टक्कर होती है। वो वेश्या अमर फल लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच गई।
बापरे, सोचिए, राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठा है और अचानक उसकी नजर उस फल पर पड़ती है जो उसने कल ही अपने सच्चे प्यार के प्रतीक के रूप में अपनी रानी को दिया था,
और आज वही फल एक वेश्या के हाथों में है।
अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें ना, तो इंसान अक्सर खुद को अपनी कहानी का मुख्य किरदार मानता है।
बिल्कुल,
हमें लगता है कि दुनिया हमारे ही इर्द गिर्द घूम रही है।
बिल्कुल,
राजा भी यही मानता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक साइड कैरेक्टर है।
एकदम,
और इसी चीज को मनोविज्ञान में विश्व दृष्टिकोण का पतन या कोलैप्स ऑफ वर्ल्ड व्यू कहा जाता है।
हाँ, इसे महज एक दिल टूटने या धोखे की घटना कहकर हम इसकी गहराई को बहुत कम कर देंगे। देखिए, इंसान अपनी पहचान का निर्माण उन कहानियों के आधार पर करता है जो वो खुद को रोज सुनाता है। भर्तृहरि के दिमाग में उनका वजूद इस सच पर टिका था कि वे एक अजेय राजा हैं और उनकी रानी का प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
मनोविज्ञान के अनुसार
हमारा वजूद ना एक जेंगा गेम के टावर की तरह होता है।
हाँ, जहाँ हर ब्लॉक हमारे विश्वासों का प्रतीक है।
बिल्कुल, और जब वो अमर फल घूमकर वापस राजा के पास आया तो समझ लीजिए किसी ने उस टावर का सबसे निचला और अहम ब्लॉक ही खींच लिया था,
और पूरा टावर धड़ाम से गिर गया।
राजा की रानी सेनापति से प्यार करती थी, सेनापति वेश्या से प्यार करता था।
इस एक घटना ने राजा को ये दिखा दिया कि जिसे वो अपना ब्रह्मांड समझ रहा था वो असल में एक बहुत बड़े और बेतरतीब चक्र का महज एक छोटा सा हिस्सा था।
और इस धोखे का जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। हाँ, क्योंकि राजा ने केवल उस रानी को नहीं छोड़ा, उसने अपना सिंहासन, अपना मुकुट, राजपाट सब कुछ त्याग दिया।
जिसके इशारे पर बड़ी बड़ी सेनाएं चलती थीं, वो इंसान रातों रात एक वैरागी बन गया और जंगलों की ओर निकल पड़ा।
स्रोत में सबसे दिलचस्प हिस्सा वो साहित्य है जो इस पूरी मानसिक उथल पुथल के नतीजे के रूप में सामने आया, भर्तृहरि के तीन मशहूर शतक।
हाँ, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये सिर्फ किताबें नहीं लगती मुझे।
नहीं, ये एक इंसान के मस्तिष्क के भीतर चलने वाले विकास क्रम के तीन अलग अलग चरण मालूम पड़ते हैं। ये क्रमिक विकास वास्तव में मानव आत्मा के सफर को दर्शाता है।
तो सबसे पहले श्रृंगार शतक की बात करते हैं। ये उस दौर की रचना है जब भर्तृहरि प्रेम, सौंदर्य और सांसारिक सुखों में पूरी तरह डूबे हुए थे।
बिल्कुल, इसमें प्रेम की बारीकियों, शारीरिक आकर्षण और इंद्रियों के सुख का अत्यंत सजीव वर्णन है।
मतलब ये उस इंसान का दृष्टिकोण है जो मानता है कि दुनिया की सारी खुशी और सार्थकता बस एक दूसरे के शरीर और प्रेम में समाहित है।
लेकिन जब उस प्रेम का भ्रम टूटता है तो इंसान तुरंत संन्यास की ओर नहीं भागता।
हाँ, और शायद इसीलिए श्रृंगार के बाद नीति शतक का जन्म होता है।
सही कहा, जब प्यार और रोमांस धोखा दे जाते हैं तो इंसान जीवन में एक व्यवस्था, एक तार्किक ढांचा खोजना चाहता है।
नीति शतक व्यवहारिक जीवन के बारे में है, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, मूर्खता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है,
सही और गलत के नियम क्या है। ये उस राजा का प्रयास लगता है जो अपनी बिखरी हुई दुनिया को नैतिक नियमों और कर्तव्यों के सहारे समेटने की कोशिश कर रहा हो।
मुझे ये विश्लेषण बहुत सटीक लगता है, क्योंकि जब भावनाएं इंसान को चोट पहुंचाती हैं, तो वो तर्क और नियमों के शरण में ही जाता है।
नीति शतक उसी तर्क की खोज है। लेकिन देखिए, नियमों और नैतिकता का पालन करने से समाज तो व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन इंसान के भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती।
और जब भर्तृहरि को ये समझ में आया कि न तो श्रृंगार का जुनून और न ही नीति का अनुशासन आत्मा को स्थायी शांति दे सकता है, तब
तीसरे चरण का उदय हुआ, वैराग्य शतक।
वैराग्य शतक, जहां मोह भंग अपने चरम पर पहुंचता है। ये संसार से पूरी तरह विरक्ति और आध्यात्मिक शांति की खोज के बारे में है।
तमर फल के उस एक धोखे से जो आग भड़की थी, वो वैराग्य शतक तक आते आते राख जैसी शांत हो जाती है।
इसमें भर्तृहरि समझाते हैं कि सुख बाहरी चीजों को पाने में नहीं है, बल्कि इच्छाओं के ही त्याग में है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा वैचारिक टकराव नजर आता है।
कैसा टकराव?
मतलब क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे खूबसूरत, रोमांटिक और कामुक श्लोक लिखे, उसी ने दुनिया छोड़ने और विरक्ति पर सबसे प्रभावशाली ग्रंथ लिख दिया?
ये सवाल उठना लाजिमी है।
क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है कि कल तक जो इंसान प्रेम को ही सब कुछ बता रहा था, आज वो उसे पूरी तरह नकार रहा है?
देखिए, पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर हम दर्शन शास्त्र की गहराई में उतरें, तो ये एक स्वाभाविक और तार्किक विकास है।
वो कैसे?
भर्तृहरि का वैराग्य इसलिए इतना प्रामाणिक और शक्तिशाली है क्योंकि उन्होंने सुख और श्रृंगार को उसकी चरम सीमा तक जिया था।
अच्छा।
इंसान उस चीज को कभी नहीं छोड़ सकता जिससे उसने पूरी तरह भोगाई ना हो। बिना गहरे मोह के सच्चा मोहभंग पैदा हो ही नहीं सकता।
इसका मतलब है कि जब तक किसी चीज का असली स्वरूप या उसका खोखलापन सामने ना आ जाए, तब तक हम उससे आजाद नहीं हो सकते।
बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जो इंसान जीवन भर गरीबी में रहा हो, अगर वो कहे कि दौलत में कुछ नहीं रखा, तो शायद उसमें वो अनुभव की गहराई नहीं होगी।
हाँ, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है। लेकिन जब एक ऐसा राजा जिसने असीमित सत्ता और प्रेम का हर सुख भोगा हो, वो ये घोषणा करे कि इन सब में कोई स्थायी शांति नहीं है, तो उसके शब्दों का वजन बहुत भारी होता है।
एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया में श्रृंगार और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। भर्तृहरि ने प्रेम और सत्ता के शिखर को छुआ था,
और जब उस चरम सुख ने उन्हें धोखा दिया, तो उनका वैराग्य किसी मजबूरी या हार से नहीं उपजा था।
श्रृंगार के बिना वैराग्य अधूरा है, क्योंकि अनुभव के बिना ज्ञान केवल एक किताबी बात रह जाता है।
ये नजरिया तो इस पूरी कहानी को देखने का ढंग ही बदल देता है,
है ना?
यानी श्रृंगार, नीति और वैराग्य कोई अलग अलग खंड नहीं है, बल्कि इंसान की चेतना की सीढ़ी के तीन कदम है। पहले हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं,
फिर हम उससे सहेजने के लिए नियम बनाते हैं,
और अंत में जब समझ आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं।
बिल्कुल। और स्रोत के इस प्राचीन दर्शन का सबसे दिलचस्प पहलू वो है जहां ये आधुनिक मनोविज्ञान से जुड़ता है।
हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी। आज के जेंजी और मिलेनियल्स के लिए एक राजा की ये पुरानी कहानी क्या मायने रखती है? मतलब आज हमारे पास न तो कोई बड़ा राजपाट है और न ही कोई अमर फल बांट रहा है।
इस सवाल का जवाब आधुनिक मनोविज्ञान के एक बेहद चर्चित सिद्धांत में छिपा है, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है।
हेडोनिक ट्रेडमिल?
हाँ, श्रोत में इस अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी मानसिक उलझन और तनाव का मूल कारण है।
श्रोत में हेडोनिक ट्रेडमिल का जो विवरण है वो वास्तव में इंसानी फितरत की बहुत ही सटीक व्याख्या करता है।
भर्तृहरि की कहानी और आज के युवा की मानसिक स्थिति के बीच ये सिद्धांत एक सीधा पुल बनाता है।
हेडोनिया का अर्थ ही है सुख या आनंद की निरंतर चाहत।
हम सोचते हैं कि बस वो एक नया गैजेट मिल जाए,
या ऑफिस में वो प्रमोशन हो जाए,
या सोशल मीडिया पर हमारे इतने फॉलोअर्स हो जाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह सफल और खुशहाल हो जाएगी।
हम उस एक चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं,
और जब वो चीज मिल जाती है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक तेज बहाव होता है। कुछ दिनों या हफ्तों तक हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं,
लेकिन फिर क्या होता है? हमारा दिमाग उस नई चीज का आदि हो जाता है।
बिल्कुल, हमारी खुशी का स्तर, जिसे मनोविज्ञान में बेसलाइन कहा जाता है, वो वापस वहीं आ गिरता है जहां वो पहले था।
हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं।
एकदम सही उपमा है। हम अपनी गति बढ़ा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खुद को थका रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम एक ही जगह पर खड़े हैं।
हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। भर्तृहरि का वो अमर फल आज हमारे लिए वो नया फोन, वो नई नौकरी या वो परफेक्ट रिलेशनशिप बन गया है जिसके पीछे हम लगातार दौड़ रहे हैं।
और ये आज के हसल कल्चर की सबसे कड़वी सच्चाई है।
हम रोज सुबह उठते हैं, खुद को एक मशीन की तरह काम में झोंक देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन वो परफेक्ट जिंदगी मिलेगी।
हम सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते हैं बस एक छोटे से डोपामीन हिट के लिए।
लेकिन जैसे ही फोन की स्क्रीन बंद होती है, अंदर का वो गहरा खालीपन फिर से लौट आता है। हम सब एक ऐसे अमर फल की तलाश में हैं जो हमें हमेशा के लिए संतुष्ट कर दे,
लेकिन वो कभी मिलता नहीं, और इसी निरंतर असंतोष को पहचानने का नाम ही वैराग्य है।
लेकिन आज के समाज में तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चले जाना है।
हाँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। आधुनिक संदर्भ में भर्तृहरि के दर्शन के अनुसार वैराग्य का अर्थ इस हेडोनिक ट्रेडमिल से नीचे उतरने की कला है।
ट्रेडमिल से नीचे उतरना,
ये उस पल की जागरूकता है जब इंसान ये समझ जाता है कि बाहरी दुनिया का कोई भी अमर फल स्थायी आंतरिक शांति नहीं दे सकता।
लेकिन इस ट्रेडमिल से नीचे उतरना इतना आसान भी तो नहीं है। हमारे आसपास का पूरा समाज, विज्ञापन और संस्कृति हमें लगातार भागते रहने के लिए ही डिजाइन की गई है।
ये वो है,
अगर हम भागना बंद कर देंगे तो समाज हमें असफल मान लेगा। ऐसे में ये जागरूकता कैसे लाई जाए?
ये मुश्किल जरूर है, लेकिन यही भर्तृहरि की असली सीख है। आपको चीजों का आनंद लेना छोड़ना नहीं है, बल्कि उनका गुलाम बनने से खुद को रोकना है।
अच्छा,
जब कोई इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि पैसा, शौहरत या रिश्ते अपने आप में पूर्णता नहीं दे सकते, तब वो उन चीजों का सही मायने में आनंद ले पाता है।
मतलब आप काम करते हैं, आप सफलता हासिल करते हैं, लेकिन आप उस सफलता को अपना पूरा वजूद नहीं मान लेते।
बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हम सफलता की इमारत तो बनाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन वो इमारत गिर भी जाए तो हमारा अपना मानसिक संतुलन या हमारा विश्व दृष्टिकोण नहीं टूटता,
क्योंकि हमने अपनी पूरी पहचान उस इमारत की नींव पर नहीं रखी थी। ये वैराग्य की एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली अवस्था है।
एकदम, इंसान दुनिया के बीच रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी एक दूरी बनाए रखता है। यही वैराग्य का वास्तविक रूप है।
संसार से नफरत करना संन्यास नहीं है।
नहीं, बल्कि संसार की नश्वरता को पूरी स्पष्टता के साथ देखना संन्यास है। जब भर्तृहरि ने अपना भव्य महल छोड़ा तो वो दुनिया से भाग नहीं रहे थे,
वो बस एक ऐसे भ्रम से बाहर आ गए थे जिसे वे अब तक सच मान बैठे थे।
और आज के युवाओं के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। जब हम ये समझ जाते हैं कि खुशी बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, तब हम अपने भीतर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं,
और यहीं से उस शांति का जन्म होता है जिसे कोई अमर फल नहीं दे सकता।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात उभर कर सामने आती है कि श्रृंगार से लेकर मीति और अंततः वैराग्य तक का राजा भर्तृहरि का सफर सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है।
नहीं, ये हर उस इंसान की मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो इस दुनिया में पूर्णता की तलाश कर रहा है।
हम सब शुरुआत में भौतिक सुखों यानी श्रृंगार के पीछे भागते हैं। जब वहां निराशा मिलती है तो हम जीवन को एक व्यवस्था और नियमों में बांधने की कोशिश करते हैं।
और अंत में अगर हम पर्याप्त रूप से जागरूक रहें तो हम उस मानसिक स्थिति तक पहुंचते हैं जहां बाहरी सुख या दुख हमारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाते।
स्रोत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी मुझे यही लगता है। भौतिक दुनिया में सफलता पाना या महत्वाकांक्षी होना कहीं से भी गलत नहीं है।
बिल्कुल नहीं। भर्तृहरि ने भी श्रृंगार को पूरी भव्यता से जिया था। संदेश ये नहीं है कि दुनिया में कुछ हासिल मत करो। संदेश बहुत स्पष्ट है, हासिल करो लेकिन जागरूक रहो।
हासिल करो लेकिन जागरूक रहो, ये एक ऐसा मंत्र है जो आज की भागती हुई पीढ़ी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।
इंसान दुनिया की हर कामयाबी पाले लेकिन उस शोहरत, पैसे या रिश्ते से इस कदर अंधा होकर ना जुड़ जाए कि उसके छिन जाने पर इंसान का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए।
क्योंकि संसार की हर चीज, चाहे वो कितनी भी पक्की क्यों ना लगे, अंततः नश्वर है।
उस अमर फल की तरह ही जो देखने में शाश्वत लगता था लेकिन एक हाथ से दूसरे हाथ में बस घूमता ही रहा।
असली दुख चीजों के छिन जाने में नहीं है बल्कि उन चीजों के प्रति हमारी उस अंधी आसक्ति में है जो हमें ये मानने पर मजबूर कर देती है कि हम उनके बिना अधूरे हैं।
एकदम सही।
एक राजा के अहंकार के टूटने से लेकर एक महान दार्शनिक के जन्म तक की ये यात्रा हमें अपने ही जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हमने जाना कि कैसे आज का हसल कल्चर और हेडोनिक ट्रेडमिल उसी पुरानी मानवीय कमजोरी का नया रूप है।
बिल्कुल।
लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बेहद उलझा हुआ और गहरा सवाल पैदा हो गया है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको अकेले में विचार जरूर करना चाहिए।
बताइए।
श्रृंगार के बिना वैराग्य की पूर्णता पर हमने बात की, लेकिन क्या सच्चा वैराग्य या वास्तविक विरक्ति की व्यवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब इंसान ने पहले जीवन के हर सुख और मोह को पूरी तरह से जी लिया हो?
बहुत ही गहरा सवाल है।
है ना? क्या बिना ट्रेडमिल पर दौड़े हम उसकी थकान और निरर्थकता को महसूस कर सकते हैं?
विचार कीजिएगा, क्या बिना उस अमर फल का स्वाद चखे उसके गहरे मोह से आजाद होना वाकई संभव है?
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।